राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारे जमुना तीर वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय वंशपाद परमहंस परिव्रज काचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेशल भाषण अरविंद भक्तिविदान स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस कौन बेबड़ी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय वंशपाद परमहंस परिव्रज काचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेशल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद ओ ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ओ ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ओ ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ग्लोरियस श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीजुतापद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम भगवान चैतन्य के पांच स्वरूप पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम ये पांच पांच स्वरूप में भगवान की अलग अलग विभूतियां यानी कि इनकी जो शक्ति है ये शक्ति का प्रकटीकरण पांच पांच तत्वों में हुआ है, तो उसकी चर्चा करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के ये पांच तत्व लिखने से पहले भगवान की विशिष्टता इन पांच तत्वों में जो रही है उसके बारे में ये श्लोक अवगत कराते हैं हमें कि अगत्येक गतिनत्वा ही नाथ अर्थिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र ही अर्थ है। इस तरह मैं उन भगवान को प्रेममयी भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूं। पंच तत्व में अवतीर्ण होने के लिए कारण ये प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए ये पांचे तत्व की आवश्यकता है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो भक्ति तत्व तो जानना हमारे जन्मसिद्ध अधिकार रहता है, क्योंकि सनातन अवस्था का सनातन व्यवहार प्रेममयी भक्ति है। जो बहुत सारी अन्य बीच बीच में आने वाली जो उपलब्धियां हैं, किसी को कोई इच्छा हो तो शक्ति मंत बनना चाहते हैं, कोई अपनी आशा ऐसी व्यक्त करता है कि बहुत धनाढ्य बने, जो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्य को जीवन में उपलब्धियां गिनते हैं। भगवान के पास है षडगुण और षड ऐश्वर्य पूर्ण कहलाने वाले, और जीवात्मा भगवान का अनुकरण करने के लिए वो छह सिद्धियों मांग सकता है, लेकिन उससे भी न तो भगवान की समकक्ष बन सकता है यदि सब कुछ मिलने पर भी, न तो उसको संतोष मिल सकता है। कुछ न कुछ क्षतियों से वो वंचित रहता है हमेशा। तो मनुष्य ईर्ष्यालु है, जो ईर्ष्यालु है वो कभी भगवान का गुण तत्व जान ही नहीं सकते। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं इदम तु ते गुह्यम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षशेषु भात राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्य। सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये स्थिति कहां मिलेगी आपको? हरि बोल। सुसुखम कर तुम अव्ययम वो परिणाम है, ऐसा विनाश न होने वाला सुख की जो स्थिति है, तो इसका मतलब यह है ये प्रेम की स्थिति होनी चाहिए। तो भगवान के छह ऐश्वर्यों का हम मिथ्या अनुकरण करते हैं, और यदि हमें कुछ उपलब्धियां होती हैं फिर भी हम ईर्ष्यालु ही रहते हैं, जबकि भगवान के विशुद्ध भक्ति में जो प्रेम संपादित होता है तो उसकी बराबरी अन्य कोई उपलब्धियों से गिनी ही नहीं जा सकती। इसलिए ये अध्याय में चैतन्य महाप्रभु पांच तत्वों में अपना विस्तार करके एक साथ साथ में ये संकीर्तन यज्ञ की स्थापना में प्रेम निहित समाया है उसका घटस्फोट करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां लिखते हैं। भौतिक अस्तित्व से परे हमें जीने का अधिकार है, ये कोई कल्पना का विषय नहीं है लेकिन साक्षात्कार का विषय होता है। साक्षात्कार की पद्धति बताई गई है, जब भगवान के नाम गुण का श्रवण मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और वो भक्ति की स्थिति में आता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति जो भक्ति की ये स्थिति को प्राप्त करने से हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है और कभी भक्ति में विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, वो नैष्ठिकी भक्ति कहलाती है। निष्ठा स्थिति तो आप जानते हो भक्ति में, वो मुक्ति की स्थिति है। चाहे कोई भी ऐसे छोटे छोटे अनर्थ इधर उधर लटकते रहे होंगे फिर भी मुक्ति की स्थिति तो मिलती है, लेकिन ये निष्ठा वाली जो स्थिति है उसे ऊपर वास्तविक भक्ति का के लिए रुचि प्राप्त होगी और जो भक्ति के द्वारा प्रेम हमें पंच पुरुषार्थ का महान पुरुषार्थ बताया है मोक्ष के बाद का, वो प्राप्त होगा। आसक्ति भाव और प्रेम में पड़े रहने वाले वो नित्य मुक्त विशुद्ध भक्त होते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जय जयकार करता हूँ, जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक व्यक्ति धन्य है। पंचतत्व की विवेचना करने की मैं चेष्टा करूंगा। चेष्टा करना क्या बात है, किसी का कुछ अनुकरण करते हैं वो भी चेष्टा कहलाती है। अपनी इच्छा के अनुसार हम मनगढ़ंत ढंग से यदि कुछ करे वो भी चेष्टा कहलाती है, लेकिन चेष्टा का यहां मतलब है कि उसके लिए मैं प्रवृत्त होता हूं, उसे चेष्टा कहते हैं। जो भी कर्तव्य करें वो भी चेष्टा हो जाती है। चेष्टा करना कभी कभी किसी का मिथ्या अनुकरण करना को भी चेष्टा कहते हैं। विनम्रता में हमें कुछ करने की इच्छा होती है तो उसके लिए भी वो भाव बताने के लिए भी मैं चेष्टा करूंगा, ऐसा कवि कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो सर्वोत्तम फल भक्ति का प्रेम है और भगवत प्रेम है, दूसरों का प्रेम नहीं बताया, भगवत प्रेम की प्राप्ति, वो समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो प्रयत्न करते हैं तो उसमें वो कह रहे कि पंच तत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तब विविध विभेद। अध्यात्म दृष्टि से इन पांच तत्वों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दिव्य धरातल पर भी सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती है, तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। प्रेम रस में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं क्योंकि अलग अलग संबंध होने के कारण वो रस की अनुभूति अलग अलग होती है। पांच संबंधों तो आप जानते हैं, शांत रस का भी तो संबंध है कि सेवक भाव, बाद में उसे ऊपर उठते हैं तो भ्रातुर्भाव और मित्रता का भाव है, उसके बाद ऊपर है वो वात्सल्य भाव है, बाद में माधुर्य भाव है। शांत सेव्य भ्रातुर वात्सल्य माधुर्य, इस तरह पांचे भावों में हम अलग अलग संबंध में जो प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं दोनों साइड पर, भगवान की साइड पर भी और भक्त की साइड पर भी, तो उसका जो उसके आपले है वो आपले उसी मर्यादा का पालन करते करते वो रस की अनुभूति कराती है। मिक्स नहीं करना, ये शुद्ध भाव, ये शुद्ध रस पांच बताए गए हैं। क्योंकि ये पांचे पांच संबंध विविधता वाले हैं इसलिए उसका आस्वादन करने के लिए उसमें अंतर करना आवश्यक होता है कि नहीं, अन्यथा पांचे पांच रस एक ही कृष्ण तत्वों में मिलता है लेकिन जीव अपने अपने व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं, वो रसों का आस्वादन करता है, उसे सभी रसों का एक साथ सब कुछ आनंद मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि वो आश्रित है, आश्रयदाता कृष्ण भगवान है। लेकिन हम विशुद्ध रस में देखें तो कृष्ण आश्रय बन जाते हैं और गोपियों का प्रेम जो सर्वोच्च बताया गया है वो आश्रयदाता बन जाते हैं, भगवान इन पर आधार रखते हैं, आश्रय करते हैं, भगवान का वो अस्तित्व है। तो ये विविधताएं वाले जो संबंध है, विविधता वाले संबंध में विविध रसों का आस्वादन करना होता है तो ये पांच पांच तत्वों में हम पूर्णतया चैतन्य महाप्रभु के अवतार में हम अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण वही है पर यही पांच तत्व में वो विभाजित हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है, वो तो पहले स्थापित कर देना होता है, इनके विस्तार ये है और इनकी इच्छा से इनके विविध कर्तव्य, बताए जाते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम, एक भक्त के रूप में आए हैं। गोलोक वृंदावन में सर्वप्रथम भक्त तो राधा रानी होती है। तो यहां गौरवर्ण राधा का वर्ण लेकर आए हैं। वर्ण संपूर्ण रूप से का जो मूल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, वो राधा रानी के भाव से वो अकृष्ण, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम त्विष अकृष्णम, तो वो कृष्ण यानी कि काला कहलाता है, तो काला का विरुद्ध अकृष्णम वो गौर कहलाता है, सही। और स अंग उपांग पार्षद शस्त्र अशस्त्र सब लेकर आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता था, दिग्विजयी को भी उन्होंने चौपट कर दिया था, लेकिन शास्त्र की मर्यादा में चैतन्य महाप्रभु ने रहकर जो सर्वोच्च भगवत तत्व समझाने में जो सफलता है, श्रुति स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्र की विधिन बिना भक्ति की सिद्धि नहीं होती। तो भक्ति भगवान और भक्त तीनों की ऐसी एकजुटता रहती है, तो चैतन्य महाप्रभु ये तीनों को भी समावेश करते हैं। तो स्वयं भक्त रूपम है, स अंग उपांग ये इनके विस्तार। तो बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, बलदेव को पहले ही अध्याय में भगवान का दूसरा शरीर बताया, भगवान का दूसरा शरीर, लेकिन वो सांधिनी शक्ति स्थापित करता है। सांधिनी शक्ति वास्तविकता रजू करने की शक्ति है, कल्पना की शक्ति नहीं है, वास्तविकता रजू करने की शक्ति है। जो कुछ है तो वस्तुस्थिति को लेकर हमें समझ में आता है। जैसे भौतिक वस्तु स्थिति को समझ पाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक वस्तु स्थिति को भी समझने की आवश्यकता होती है। वो जिम्मेदारी है बलदेव की। सारी उपस्थिति भगवान का धाम, भगवान के विस्तारों को समझाना, जब ये धाम भी भगवान से अब अछूत नहीं, अभेद नहीं उनकी शक्ति, तो वो सांदेनी शक्ति बलदेव प्रस्थापित करते हैं। हमने ब्रह्म संहिता में भी सुना कि जो ये चिंतामणि गोलोक धाम की ब्रह्मा जी कल्पना ही नहीं करते हैं, वास्तविकता बता देते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो सर्व कारण कारणम ये आध्यात्मिक जगत का कारण है, वो वास्तविक है, वो जिम्मेदारी बलदेव की है। इसीलिए कहते हैं सहस्त्र पत्र कमलम सहस्त्राख्यम महत पदम तत्कर्णी कारणम तद अनंतांश संभवम,
किससे संभव है? अनंतांश
कौन है? बलदेव का विस्तार, बलदेव की सांधिनी शक्ति का जो स्वरूप है, बलदेव स्वयं वो सांधिनी शक्ति भगवान की शक्ति है, तो इनका भी स्वरूप होता है। तो यहां भक्ति प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु सर्वप्रथम आए। भक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनके जीवन में देखें तो विशुद्ध भक्ति की स्थापना के लिए ही उन्होंने काम किया है, उन्होंने प्रचार किया है, उपदेश दिया है, और उनकी जो साउथ इंडिया की जो यात्रा थी वो भी उसके लिए थी। इसलिए इनकी नजर में विशुद्ध भक्ति की स्थापना भगवान इस कलयुग में करने आए हैं तो कितना बड़ा महत्व होगा उसका। इतनी अनुकंपा कलयुग के आदमियों को, तो नित्यानंद प्रभु को जिम्मेदारी दे दी, अरे भैया तू तो सब कुछ स्थापित कर सकता है, भक्ति का प्रचार भी तेरी जिम्मेदारी है, स्थापित करो तो इसका विस्तार भी तुम करो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, जाओ भैया गृहस्थी बन जाओ और प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु के मत्थे पर जैसे बिजली गिरी हो ना, ऐसी हालत हो गई इनकी। वो इनसे क्यों जुदा हुए? लेकिन जुदाई नहीं है, जुदाई में भी एकता है। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करके वो बंगाल गए और वहां जो भक्ति का प्रचार किया है, क्योंकि भक्ति स्थापित करना है। भगवान आते हैं अपने विस्तारों के द्वारा, अपनी अनंत शक्तियां जो है इनका ही उपयोग करके वो स्थापित करते हैं। शक्ति का प्रकटीकरण होता है, इसलिए नित्यानंद प्रभु भगवान की सांधिनी शक्ति का स्वरूप है, जो इनकी जो निकटता, दोनों के बीच में निकटता ऐसी है कि कभी अलग नहीं हो पाते। यदि अलग दिखाई देते हैं फिर भी एक एकजुट होने का ही प्रयत्न करते हैं, एक साथ में ही दोनों रहना चाहते हैं, पर फिर भी यह सब विशुद्ध भक्ति में निहित है। सारे भौतिक स्तरों और आध्यात्मिक स्तरों को भी भेदने के बाद भगवान के साथ निजी व्यवहार हो सकता है। ऐसा व्यवहार ऐसे नहीं कि ओ देखो नित्यानंद प्रभु भी भगवान से बिछुड़े गए हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमें दिखाई देगा कि नित्यानंद प्रभु अलग होना नहीं चाहते हैं, स्वयं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आदेश का पालन करना भी स्वयं की जिम्मेदारी है। कौन किसको महत्व ज्यादा देता है उस पर भक्ति के विकास का आधार है। गुरु के आज्ञा मत्थे पर चढ़ाकर जो यथावत पालन करके गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है, तो उसे भक्ति के विषय में पूर्णता की ओर आगे जाने में बहुत सरलता प्राप्त होती है। अभी इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ नित्यानंद प्रभु के साथ कोई अंतर नहीं है, बल्कि अद्वैताचार्य साथ के भी कोई अंतर नहीं। वो महाविष्णु का अवतार है, महाविष्णु का अवतार है। अरे भैया महाविष्णु कृष्ण भगवान ये क्या है? साउथ इंडिया में गए थे तो सभी विष्णु विष्णु ही करते थे, और उनकी सेवा और भक्ति का प्रकार है तो सिर्फ इज्ज्या वर्शिप, यानी कि जो दूसरे दो विभाग है नवधा भक्ति में, तो अर्चनम वंदनम, अर्चनम पूजनम वंदनम, ये तीन है। तो वही भक्त अपने हृदय में जो इच्छा है, और वो भी भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा के साथ भगवान को अप्रोच करना में कोई गुना नहीं है, लेकिन फल में मर्यादा आ जाएगी। कहां प्रेम कहां ऐश्वर्य, ज्यादातर ऐसे भक्त हैं जो भगवान जैसा ऐश्वर्य पाने के लिए ही इनकी इज्ज्या करते हैं, इज्ज्या यानी वर्शिप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जो मंदिर में होती है वो तीन भाग, भगवान तो वो भी इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन वैकुंठ की मर्यादा में रहना पड़ेगा। चाहे वैकुंठ आपकी नजर में अमर्यादित है, फिर भी जहां तक प्रेम का संबंध है वहां मर्यादित है, नहीवत है। कोई ऐसी सेवा भी आपके पास विशिष्ट नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी माता ने अंतस्थल की जगह पर उन्होंने अपना आसन जमाया है, इसलिए दूसरों को ऐसा परिचय करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वैकुंठ जाओ, पर लेकिन पाओगे क्या? आपको संतोष अनंत समय पर, और वो भी भौतिक अवस्था में पति पत्नी, इसी तरह भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का हर समय कोई भी प्रसंग पर वो कल्याण उत्सव करते हैं। कल्याण उत्सव में वो लोग पति पत्नी बैठकर लक्ष्मी और विष्णु का विवाह संपन्न कराते हैं, पूजा इजे। तो दोनों पति पत्नी तीव्र भक्ति में यदि इस तरह जुड़े हैं तो इनके लिए गति वैकुंठ की बताई है, लेकिन दोनों साथ साथ में जाएंगे, उसमें जो जो सिद्धियां हैं वो सभी भी प्राप्त कर सकते हैं। सारूप्य सामीप्य सालोक्य सारष्टि, ये चारे चार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पांचवी नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये भक्ति भी मर्यादित बन जाती है, भक्ति का जो प्रेम संपादन आप वहां वैकुंठ में नहीं कर पाओगे। तो वही महाविष्णु के रूप में अद्वैताचार्य आए, सारी सृष्टि में वो व्यवस्थापक है, संचालन भगवान स्वयं की इच्छा से होता है, लेकिन वो ऐसे माध्यम है
जो भगवान को बुलाने के लिए है वो माध्यम बनते हैं। सारे अवतारे जब ये धरती पर आते हैं तब वो अनिरुद्ध या क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जब आए तो अनिरुद्ध इनके साथ आया है। सभी एकत्र होकर एक ही स्वरूप में आए हैं, लेकिन यहां चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य जब आए तो वो महाविष्णु के रूप में है। बलदेव एंड महाविष्णु, महाविष्णु सारे भौतिक जगत के अधिष्ठाता हैं। कारणो दक्षाय विष्णु भी कहो या इनके जो विस्तार है कारणो दक्षाय विष्णु में से क्षीर गर्भ दक्षाय विष्णु बने, गर्भ दक्षाय विष्णु से क्षीर दक्षाय विष्णु है, क्षीर दक्षाय विष्णु ये अनिरुद्ध का विस्तार बताया है। जैसे गोलोक वृंदावन में प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वैसे तो भगवान के बेटे प्रद्युम्न बेटा है, पर फिर भी भगवान का स्वरूप है। भगवान की सारी शक्तियां इनके विस्तारों में होती ही है, पर लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व के माध्यम द्वारा वो हर एक जीव को किस कर्तव्य में वो नियोजन करते हैं, यानी किस उनको इसमें आकर्षित करते हैं कि ऐसी सेवा, तो ऐसी सेवा की विविधताएं होती है, सेवा की विविधताएं होती है। तो बाद में राधा रानी के भाव गदाधर पंडित में आए, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता है कि ये भाव का प्रकटीकरण कब हुआ है। हमें तो एक ही प्रसंग याद है जब वल्लभाचार्य के साथ थोड़ा मतभेद पड़ा चैतन्य महाप्रभु का, तभी चैतन्य महाप्रभु की नाखुशी देखकर सभी भक्त इनसे जरा दूरी रखते थे, लेकिन वल्लभाचार्य गदाधर पंडित के पास गए। कोई भक्त राधा रानी की शरण में आता है तो अवश्य उसका आगे बढ़ोतरी तो होनी ही चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गदाधर पंडित ने अपने शिष्य द्वारा उस दीक्षा करवाई है और स्वयं ने वल्लभाचार्य की विनंती चैतन्य महाप्रभु को फिर से सुबोधिनी के बारे में सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु को अनुमोदन किया जो स्वयं नहीं करना चाहते थे। इसीलिए राधारानी के विरुद्ध स्वभाव और चैतन्य महाप्रभु के अलग इच्छा, ये दोनों में राधा रानी के थ्रू जो कोई आता है तो भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते, ये एक नियम है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं इन पर थोड़े नाराज हो गए, लेकिन ज्यादातर नाराजगी टिकी नहीं राधा रानी के भाव के। उसमें कृष्ण भगवान का तो हमेशा पराजय ही होता है, तो उन्होंने कहा कि गदाधर पंडित तुम भी इनके साथ हो। अब प्रभु जरा बेचारे गरीब दिन होकर आया है तो स्वीकार करना चाहिए, तू कहता है तो ठीक, हाँ तू जिम्मेदारी लेता है तो ठीक। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बल्लभ पंडित आप बोले मैं सुनूंगा, क्योंकि आप जब सीधे आए थे और आपके भाव को देखकर मुझे नाराजगी हुई थी, वो एक सत्य है, क्योंकि आपके मन में अहंकार था कि आपने श्रीधर स्वामी आपके मुंह से निकला है कि आपने श्रीधर स्वामी की टीकाएं का सारा खंडन कर दिया है इस बोधिन में, और उनसे भी ऊपर जैसे भाव के हमने सारी भक्ति की पद्धति बताई है। तो एक तरफ स्वामी कहो, दूसरी तरफ उसका अनादर करो, ये तो वेश्या वृत्ति है, वेश्या वृत्ति है। तो कहने का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहे ऐसे भाव से हम श्रीमद् भागवत की जो गरिमा है तो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का मान भंग करने से तो कम हो जाती है, इसीलिए आप ये सुबोधिनी टीका आपने जो लिखी है तो मैं सुनना नहीं चाहता। तो ये सुधार इस तरह गदाधर पंडित के मार्फत आया, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, यदि गदाधर पंडित जिम्मेदारी ले लेता है तो मैं सुनूंगा। बल्लभाचार्य खुश हो गए, बैठे सुनाने लगे सुबोधिनी, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था के प्रकरण खत्म हुए, चैतन्य महाप्रभु ने रोका, बल्लभा ये काफी है मेरे लिए, यहां तक के मैं मंजूरी देता हूं, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को यशोदा स्तन नंदन के अलावा मैं जानता ही नहीं। क्योंकि भगवान भी बहुत निर्दोष भाव से सारी लीलाएं करते हैं, दुनियावी दृष्टि से पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था में भेदभाव मिलेगा, शरीर की रचना के अनुसार भी थोड़ा भेदभाव जगेगा। तो उसके लिए ये सुबोधिनी की परिभाषा काम नहीं करती, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कह इतना काफी है। फिर भी भगवान के ये किशोरावस्था के ये जो सारे रासलीला इत्यादि के भी वर्णन पर मायावादी भी अधिकार जमा देते हैं, तो कई वैष्णव लोग भी अधिकार से करने लगते हैं, पर लेकिन जहां तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का संदर्भ है वो पूरे पूरे बिना ईर्षा, बिना ईर्षा विशुद्ध भक्ति करने की भावना होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति तो जो ईर्षालु नहीं है उसको ही प्राप्त होती है। इदम तु ते गुह्यम प्रवक्ष्यामि अनसूयः। तो इस तरह गदाधर पंडित की उपस्थिति भी राधा रानी के भाव को इंगित करने में है। और नारद मुनि वो भक्ति की शक्ति और भक्त में कोई अंतर नहीं है। तब भक्त के भक्त कृष्ण भगवान के सर्वप्रथम भक्त को राधा रानी कहते हैं, वो गदाधर पंडित के रूप में आए और भक्ति की शक्ति का जब प्रचार नारद मुनि जिस तरह करते हैं, वो जीव तत्व नहीं है, भगवान की शक्ति का तत्व है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लेकिन देवताओं की श्रेणी में भी आते हैं, लेकिन भगवान के विशुद्ध पार्षद के रूप में भी आते हैं। और भक्ति या भगवान के हित के लिए ही काम करते हैं। भगवान को आकर्षित करने के लिए कभी कभी ऐसा विरोधाभासी कर्तव्य भी करते हैं, क्योंकि विशुद्ध भक्त होकर भी कंस को कहते हैं कि अरे तेरे तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, आज 10 दिन हो गए हैं, सारे बच्चों को खत्म कर दे जा। नारद मुनि कंस को सलाह देते हैं कि तू किस पर भरोसा करता है, यदि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है तो कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन, यू आर लेट, जल्दी खत्म कर, यानी कि जल्दी भगवान आकर मारेंगे। भगवान इतनी राह क्यों दिखाते हो, फटाफट काम करो। ये भक्त की भावना होती है जो हमें अद्वैताचार्य ने भी हुंकार से नवद्वीप में जब वो स्मार्त ब्राह्मण लोग क्या व्यापार धंधा करते थे, समाज में विध्वंस करते थे, ये हिंदू लोग पहले से ही मुसलमानों की चपरासी करते थे ऐसे, दूसरे हिंदू के लिए यदि आप ईर्ष्यालु हो तो कौन उसका न्याय कराएगा? मुसलमान। ये 500 साल पहले की ये परिस्थिति थी, अभी क्या है? अभी भी वो ये है, 70 साल से परदेसी राज कर गए, परदेसी पद्धति से। तो कहने का मतलब है ये ईर्ष्या मुस्लिम मुस्लिम में भी होती है, हिंदू मुस्लिम में भी होती है, हिंदू और यूरोपियन में भी होती है। सब ईर्ष्या का झमेला आप हर रोज अखबार में अभी देखते जाओगे। ये कलयुग है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अने अपने पांचे पांच विस्तार स्वयं भक्त रूपम स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम पांच पांच रूप को व्यवस्थित रूप से कर्तव्यता के हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हमें विस्तार करना चाहिए, सारी जो संकीर्तन मूवमेंट का ये पांच आधार बनाया है। तो किसी को कोई प्रश्न है? नौ बज गए हैं, दस बज गए, सॉरी है?
अभी अगला स्पीकर है राधा बल्लभ प्रभु।
जय राधा बल्लभ जी, आओ। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।